क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? अव्यक्त क्रांति के वहन से विश्व को बचाएगा। उठ कदम बढ़ा, तेरी सांस में तूफान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियां। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियां। जंजीरों में कब बंधी ये तपती चिंगारियां? तेरे हर कदम पे साथ स्वयं भगवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। करवटे नहीं तुझे बदलना अब जमाना है। तेरे दम से ही ये जमी आसमान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है।
एक व्यक्ति ने ये सुना कि ऐसा एक कुआ है, अगर उस कुएं से कोई भी प्रश्न पूछो तो वो कुआ उत्तर दे देता है। कई किताबें उसने पढ़ी और ऐसा एक रहस्यमय कुआ, अ मिस्टीरियस वेल, के बारे में उसने सुना पढ़ा। कईयों ने कहा भी, पर आज तक उस कुएं को कोई ढूंढ नहीं पाया। कहीं दूर गुफाओं के बीच वह रहस्यमय कुआ है। उस व्यक्ति की यह जिद थी कि वो कुआ उसे ढूंढना ही है। उसने इसको अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और एक दिन बहुत प्रयासों के बाद उस व्यक्ति ने उस रहस्यमय कुएं को ढूंढ लिया। उसने ये सुना था कि कुएं के अंदर झांक कर जो प्रश्न पूछो उसका उत्तर मिल जाता है। वो झांकता है और उस कुएं से प्रश्न पूछता है, व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है? कोई उत्तर नहीं। वो उस कुएं से फिर पूछता है, जीवन क्या है? बस उसी की प्रतिध्वनि, एको। परंतु वो भी बहुत जिद्दी है। वो रहस्यमय कुआ है और यही वो कुआ है, और उस कुएं से जो भी प्रश्न पूछो उसका उत्तर मिलता है। तो वो व्यक्ति पूछते ही रहता है अथक होकर, जीवन क्या है, जीवन क्या है, जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लाइफ। एक बुरा दिन बीत जाता है पर वो हार नहीं मानता, पूछते रहता है, जीवन क्या है, जीवन क्या है, जीवन क्या है। दूसरा दिन बीत जाता है, तीसरा दिन बीत जाता है, फिर उस कुएं को थोड़ी दया आ जाती है और कुआ कहता है, जाओ मार्केट जाओ, वहां तीन वस्तुएं हैं, वो देख कर आओ, तीन स्थान है। वो व्यक्ति जाता है, उसे खुशी होती है कि कुछ तो मिलने वाला है। वो जाता है, उसे तीन दुकानें दिखती है। पहली जो दुकान है वहां पे मेटल पीसेस, कुछ मेटल के पीस है, उस पर काम कर रहे हैं लोग। वो कहता है इसमें क्या है, और आगे बढ़ता है, एक दूसरी दुकान दिखती है, वहां पर तार होते हैं, स्ट्रिंग्स, धागे, उस पर कुछ कारीगर काम कर रहे होते हैं। और आगे जाता है, वहां कारपेंटर्स होते हैं, कारपेंटर की दुकान होती है, लकड़ियां, लकड़ी रखी हुई है, उस पर वो लोग काम कर रहे। वो देख कर वापस आता है और कुएं से कहता है इससे क्या, मेरा प्रश्न था जीवन क्या है। वो कुआ कहता है बस इसी में जीवन समाया हुआ है, अब तुम जाओ, उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। वो बहुत क्रोधित होता है उस कुएं पर और चला जाता है। कई वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन चांदनी रात होती है, वो व्यक्ति एक बगीचे के पास से गुजर रहा होता है और अचानक उसे ऐसी धुन सुनाई देती है जो उसने आज तक कभी नहीं सुनी होती है। वो अंदर जाता है तो एक व्यक्ति मेडिटेशन में, ट्रांस की अवस्था में है और गिटार प्ले कर रहा है, और वो वहां बैठ जाता है, मगन हो जाता है उस गिटार को सुनते सुनते। और अचानक उसे याद आता है मेटल पीसेस, अचानक उसे याद आता है वो कारपेंटर, वो स्ट्रिंग्स, वो तीनों में ही म्यूजिक नहीं था, संगीत नहीं था, उन दुकान में कोई संगीत नहीं था, उन कारीगर में कोई संगीत नहीं था, उस मेटल पीसेस में, उस स्ट्रिंग में, उस वुड में कोई संगीत नहीं था। परंतु अब जब ये व्यक्ति गिटार बजा रहा है तब वो संगीत निकला। और उसका प्रश्न था उस कुएं से, जीवन क्या है। जीवन जोड़ है, जीवन क्या है, सब टुकड़ा टुकड़ा है, उसको हमें जोड़ना है। भगवान ने हमें इस संसार में भिखारी बनकर नहीं भेजा है, राजा बनकर भेजा है, और सारी सामग्री इर्द गिर्द है, हमें क्या करना है, सबको जोड़ना है, इकट्ठा करना है। तो जीवन का लक्ष्य सामने स्पष्ट होगा। सब कुछ है, आसपास ही है, हमें क्या करना है, सबको जोड़ना है। हम पहले साकार मुरली पर काम कर रहे थे, फिर अव्यक्त मुरलियों को जोड़ा, तो एक साकार मुरली, एक अव्यक्त मुरली, पर जीवन तो जोड़ है, तो दो अव्यक्त मुरलियां और एक साकार मुरली। कल रात वाली तो एक्स्ट्रा थी, अभी तक हम दो अव्यक्त वाणियों का, एक अव्यक्त वाणी का अध्ययन कर रहे थे, पर क्लास आगे बढ़नी चाहिए ना, क्योंकि पोर्शन बहुत है। तो भट्टी का ये दूसरा चरण, हर दिन दो अव्यक्त वाणियां, क्योंकि हमारा माइंड अभी शार्प हो रहा है, हो रहा है ना, हो चुका है, सुपर ब्रेन, सुपर माइंड। और जीवन का लक्ष्य जब तक नहीं मिलता, हमें इन्हीं महावाक्यों में एक दिन एक महावाक्य ऐसा मिल जाएगा जो जीवन का लक्ष्य हो जाएगा। हमें याद है हम मुंबई में थे, हॉस्पिटल में थे, सेवाएं कर रहे थे 18 आवर्स। जो ड्यूटी रहती थी वो तो 6 घंटे की रहती थी, पर हमें ऐसा था कि हमें सब सीखना है। उधर आईसीयू में ही पड़े रहते थे, जब ड्यूटी नहीं रहती थी तब भी पड़े रहते थे। और एक दिन मोहिनी दीदी शांतिवन में जो थे वो वहाँ एडमिट हो गए, कुछ दिन थे, फिर ठीक हुए। ये बात है कल की मुरली कब की थी, 2010 11 फरवरी, वो शायद 1 तारीख को आए थे और 10-12 दिन रहे थे, फिर वापस उनको लाना था मधुबन। तो कौन जाएगा, हमारी आईसीयू में, हम आईसीयू में ड्यूटी नहीं थी पर आईसीयू में घूम रहे थे, देखते रहते थे। सर और मैडम थे, उन्होंने कहा तुम लेके जाओ। हमने कहा ठीक है। तो फ्लाइट से अहमदाबाद तक आए 9 तारीख, और फिर नीचे शांतिवन में रुके। हमने कहा अभी हम जा रहे, तो मुन्नी दीदी ने कहा नहीं तुम रुक जाओ अभी थोड़ा, अभी बाबा मिलन है तो उसमें रुक जाना। हमने कहा ठीक है बाबा से मिल के जाते हैं। तो बाबा आए, मुरली चली, मुरली के बीच में बाबा ने, क्योंकि उनका थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो उनको जाना था, तो बाबा ने बीच में ही बुला लिया मुरली के, और साथ में हमको भी बुला लिया क्योंकि हम साथ में थे। मोहिनी बहन के डॉक्टर से कल की अव्यक्तवाणी, ये डॉक्टर इस वाक्य से हमें पहली बार मुरली के बीच, मोहिनी दीदी थे स्टेज व्हीलचेयर पर, और उन्होंने कहा ये हमारे डॉक्टर है, तो बाबा ने एकदम सामने ले लिया। ये वाले महावाक्य के पीछे लिखा हुआ है, पर ये मुरली के बीच में मुरली रोक कर बोला हुआ महावाक्य है। मोहिनी बहन के डॉक्टर से अव्यक्त बाप दादा, सिर्फ सेवा नहीं करना लेकिन अपने बाप के प्यार की हिम्मत, उमंग यह भी देना। डबल डॉक्टर होना तो डबल काम करना। ये वाक्य क्या था इसको समझने में कई साल लग गए हमको ये क्या है और कैसी सेवा और कौन सी सेवा, और हम तो आईसीयू में कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सीख रहे हैं सब। सिर्फ सेवा नहीं करना लेकिन अपने बाप के प्यार की हिम्मत, उमंग यह भी देना। डबल डॉक्टर होना तो डबल काम करना। तो जीवन में कोई एक ऐसा महावाक्य आ जाता है जो जीवन का क्या बन जाता है, फिर लक्ष्य बन जाता है। बाप के प्यार की हिम्मत, उमंग यह भी देना। किसको देना, क्या देना और कैसे देना और कब देना तो आज से हम 2 अव्यक्तवाणियों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और साकार मुरली का अध्ययन कैसे करेंगे, मेंटल रिवीजन, सुनते सुनते ही फटाफट डालते जाना है। सेंटर पर बैठे हैं, ओम शांति भवन में बैठे हैं, जहां पर भी बैठ के मुरली सुन रहे या पढ़ रहे, पढ़ते पढ़ते ही अब लोकेशन हमको पता है, फटाफट जोड़ते जाना है। अब लिखना नहीं है, डायग्राम नहीं बनाना है, अब ये काम, क्योंकि हर दिन हमारे पास 2 अव्यक्तवाणी है अभी अगले 1 हफ्ता, भट्टी का 2 चरण और 3 चरण 40 अव्यक्तवाणियां 21 दिन में पूरी करनी है 1970 की, तो आज हम 2 अव्यक्तवाणियां लेंगे। तो सबसे पहली अव्यक्तवाणी है 5/3/70 की, हमारे 10 लोकेशन से 31, 32, 33, 34 और 40 तक। और दूसरी जो अव्यक्तवाणी है उसके लिए हम आज नए 10 लोकेशंस निर्माण करेंगे। सबसे पहली वाणी किस पर है, शिव रात्रि पर। तो पहला लोकेशन हमारा है वर्क प्लेस, अपना कर्म स्थान, ऑफिस, डिपार्टमेंट, जो भी है उसमें क्या करना है। ये मुरली है शिव जयंती की, शिवरात्रि की। जयंती अर्थात जयंती शब्द का क्या अर्थ है, जय जय, जयंती अर्थात विक्टोरियस, विजयी। तो कर्म क्षेत्र पर क्या, कर्म क्षेत्र पर शिव जयंती मनानी है, मनानी अर्थात बनना, और बनने में यहां बाबा ने बहुत सारी चीजें बताई। जैसे भक्त क्या करते हैं, जल चढ़ाते, किसके माध्यम से चढ़ाते हैं, ब्राह्मणों के। ब्राह्मण कौन है, तुम। अब तुम्हारा काम क्या है, दूसरी आत्माओं से जल चढ़ाना, मतलब दूसरी आत्माओं को बाप पर चढ़ाना। ढेर सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनको न्योछावर करना, उनको स्वाहा करना, जंप, अर्पण ये सब हमको काम करने अर्थात आत्माओं को संदेश देना है। तो कर्मक स्थान पर क्या करेंगे? आत्माओं को संदेश देना। शिवरात्रि का कर्मक स्थान पर क्या करेंगे? आत्माओं को, स्वयं जो न्यौछावर नहीं बने वो औरों को भी इतना आप समान न्यौछावर नहीं बना सकते। जैसे हम अर्पित हुए हैं वैसे वो भी अर्पित हो जाए, जैसे हम समर्पिता अर्पिता निवेदिताए हैं वैसे वो भी हो जाए। न्यौछावर, अर्पण, जंप चढ़ाना, बलि चढ़ना, झुकना, अर्पण करना, स्वाहा, कितने शब्दों का प्रयोग है। तो जहां हम काम करते हैं आज उन आत्माओं को क्या करना है? संदेश देना है। जहां हम काम करते हैं वहां क्या करना है? इस शिवरात्रि पर, इस शिव जयंती पर आत्माओं को संदेश देने का कार्य तीव्र करना है, जहां पर भी हम सेवा कर रहे हैं वहां पर। और जैसे हम निश्चय बुद्धि हुए हैं, बाबा ने काशी कलवट का उदाहरण दिया है, फिर उनको जबरदस्ती नहीं करना पड़ता है, खुद ही तैयार हो जाते हैं अर्पित होने के लिए, स्वाहा होने के लिए। वैसे तो जितना हम न्यौछावर होंगे वो भी उतना ही होंगे, हम कम न्यौछावर तो वो भी कम न्यौछावर। हिसाब है पूरा। वो नहीं हो रहे तो प्रॉब्लम किधर है? स्टूडेंट पास नहीं हो रहे, प्रॉब्लम कहाँ है? टीचर। इसलिए जो भी कोचिंग क्लासेस होती है ना आजकल, इतनी सारी हजारों ढेरों लाखों कोचिंग क्लासेस है, और उनके जो टॉप स्टूडेंट होते हैं उनका इंटरव्यू लिया जाता है और उनको कहते हैं अभी बताओ हमारे कोचिंग के बारे में कि कैसे हमने ये कोचिंग ज्वाइन की और उसके वजह से फिर हमारा कैसे उन्नति हो। ये है मार्केटिंग। पहले मैं बहुत डरता, मुझे कुछ नहीं आता है, जब से मैं इनके संपर्क में आया और इनकी कोचिंग ज्वाइन की मेरी तो एकदम बुद्धि का परिवर्तन हो गया और मैंने इसमें टॉप कर दिया। बस हाँ, फिर चल पड़ती, फिर हजारों लोग ज्वाइन करते हैं। ये है मोटिवेशन मिलता है कि पहले तो हमको पता ही नहीं था ये कैसे होता है, क्या होता है एग्जाम, जब से इसमें आए तब से पता चला। तो अगर स्टूडेंट टॉप करता है तो महिमा किसकी होती है? टीचर की महिमा होती है। तो यहां पर भी हमें क्या करना है? जितना हम न्यौछावर है, जितना हम अर्पित है, जितना हमने जंप किया है, जितना हम अर्पित है, समर्पण है, उतना ही वो समर्पण होंगे जिनको हम सिखा रहे हैं। और ये सारे कार्य कहां करने हैं? वर्क प्लेस। दूसरा है बेडरूम। बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प का जो विकल्प चलते हैं उसका एक ही कारण है, इतना जो व्यर्थ चलता है, ये क्यू जो लग जाती है, क्यू लगती है, एक इंग्लिश का क्यू, क्यू यू ई ए, और दूसरा हिंदी हिंदी का क्यू, क्वेश्चन मार्क, इस क्यू की वजह से। ये वाई जो है ना, बस यही सब दुखों का कारण है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों आखिर मैं ही क्यों? बाकी वो तो है, बाकी सब सुखी है, मैं ही दुखी क्यों? बाबा ने कहा ये सबसे टेढ़ी, ये सबसे टेढ़ा है, बाकी ये कॉमा ये इतना नहीं है, ये सबसे टेढ़ा है क्यों? इस क्यों की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी। जो हूं, जहां हूं, जिस परिस्थिति में हूं, जिन लोगों के साथ हूं, दिस आर द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट प्लेस, बेस्ट पीपल, बेस्ट टाइम, बेस्ट डिपार्टमेंट। तुम्हारा जो बॉस है ना, बेस्ट इंचार्ज, बेस्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बेस्ट बॉस। तुम्हारे जो साथी है बेस्ट साथी है, और तुम्हारे जो जूनियर्स है वो भी बेस्ट जूनियर्स है, तुम्हारे जो स्टूडेंट है बेस्ट स्टूडेंट है, तुम्हारा जो सेंटर है बेस्ट स्टूडेंट सेंटर है, बेस्ट सिचुएशन, सब कुछ जो हो रहा है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बेस्ट होमवर्क। तो बेड रूट कैस, अब डीप डीप में जाते जाओ, हमारे जीवन में अभी तक जो कुछ हुआ उस समय जब हो रहा था हम सोच रहे थे ये नहीं होना चाहिए, पर अब जब मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। उस दिन सुना ही ना कहानी, वो लड़का जाता है नौकरी के लिए, उसको बॉस पूछता है ईमेल आईडी क्या है तुम्हारा, बोलते मेरा ईमेल ही नहीं है। बोलते क्या तुम्हारा ईमेल नहीं है, तुम जॉब कैसे रखो? मैं जॉब उसको घर भेज देता है, वो बच्चा जाता है बेचारा, टमाटर देखता है पड़े हुए, टमाटर बेचता है, टमाटर की दुकान ही पूरा एम्पायर ही खड़ा कर देता है टमाटर का धीरे धीरे, टमाटर की शॉप, फिर लोगों के घर में जाता है, फिर थोड़े से टमाटर बेचता है, फिर एक ठेला लेता है, फिर दुकान बनाता है, फिर होलसेल रिटेल सब सब करते करते, और फिर एक दिन इंश्योरेंस एजेंट को घर पे बुलाता है। इंश्योरेंस एजेंट उसका सब बनाता है, बीमा पॉलिसी, और फिर पूछता है आपका ईमेल क्या है, बोलते मेरा ईमेल नहीं है, तो बोलते क्या तुम्हारा ईमेल नहीं है, बिना ईमेल आईडी के इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, जब ईमेल होता तो क्या होता, तो बोलता शॉप बॉय, बस वो दुकान में नौकरी कर रहा होता आज। तो जो है जहां है उस परिस्थिति को हृदय से दिल से स्वीकार कर लेना। हमने ये बात कई बार कही, एक सेंटर पर हम गए थे, वहां दो ही स्टूडेंट थे बस, एक माता और एक भाई। उस बहन को हमने पूछा है बस दो ही, उन्होंने कहा सेवा तो हम बहुत करते हैं परंतु यहाँ लोग आते नहीं है, क्योंकि यहाँ ना सारा नॉन वेज ये सब है। तो उसने बात जो कही ना अभी तक हमको याद रहती है, मैंने इस परिस्थिति को प्रेम से स्वीकार किया है। और वो हमने देखा सुबह 2 बजे उठते हैं, अव्यक्त मुरलियों का एकांत में अध्ययन करते रहते थे वो बहन जी, स्वीकार कर लिया, पर दिन भर सेवा भी करते रहते थे। अब स्टूडेंट रेगुलर नहीं होते हुए एक दूसरी बात है, तो क्यों जो है ना ये बहुत दुखों का कारण है। क्यों मेरे साथ ही ऐसा, क्यों मैं ही, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बाकी वो का सब ठीक चल रहा है, किसी का ठीक नहीं चल रहा है। दूर के ढोल सुहावने दृष्टि कैसी है बस उस पर डिपेंड करता है। तो बेडरूम में क्या करना है, आज सोते सोते सारे क्यू की समाप्ति कर देनी है, जो हूं जैसा हूं जहां रखा है यही ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं, एक्सेप्टेंस मतलब ये नहीं कि पुरुषार्थ करना रोक देना है, परिस्थितियों को बदलना नहीं है, पुरुषार्थ तो करते रहना है, पर अंदर से एक तृप्ति भी है, ठीक है। राम जी की कृपा से, राम जी की इच्छा। कई लोगों की आदत होती ना ये वाक्य बोल देने ना, तकिया कलाम होता है, राम की कृपा से, राम की इच्छा से, हर 2-3 लाइन के बाद ये निकलता है, जो प्रभु की इच्छा। तो सोते सोते रिलैक्स कर देना है, सारे क्यू खत्म, जो है सब ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाओ मार्केट, हमारा अगला कौन सा है मार्केट। बाबा ने पांडव भवन के लिए कहा है, बहुत अच्छे महावाक्य है कि गेट की रखवाली करो कि माया कोई अंदर आ ही नहीं पाए, आसुरी संस्कार आसुरी संकल्प। तो सोचो ये पांडव भवन है, इधर मार्केट है, और हम कौन है सिक्योरिटी गार्ड, अंदर नहीं आने देंगे आसुरी संस्कार आसुरी संकल्प, हम वो सिक्योरिटी गार्ड है। ऐसी पांडव सेना तैयार है जो आसुरी संस्कारों को आसुरी संकल्प को भी इस पांडव भवन के अंदर आने ना दे। अब पहले अपने अंदर यह पहरा मजबूत होगा, तब पांडव भवन में भी यह मजबूती ला सकते हैं। मुरली कब की है, 1970s की चल रही है, 70 की मुरली है। तो हम भी एक पहरेदार है, सिक्योरिटी गार्ड है। तो मार्केट जब भी जाएंगे तो क्या सोचेंगे, ये सब आसुरी संस्कार आसुरी संकल्प, अंदर अंदर ही पांडव भवन है, अंदर मधुबन है, भीतर वो अंदर प्रवेश ना करे। और स्थूल में भी आसुरी संस्कार और आसुरी वृत्ति या संकल्प अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। फिर आ जाओ ग्राउंड पर, तो ग्राउंड पर ऐसी सब आत्मा इकट्ठी हो गई है जो सिक्योरिटी वाले थी और जिन्होंने ये संकल्प किया था कि मधुबन में ये सब आने नहीं देंगे। और यहां पर मधुबन क्या बन गया है, जादू का घर। बाबा ने क्या बोल दिया, तो फिर मधुबन एक जादू का घर हो जाएगा, जो कैसी भी आत्माएं आते ही आसुरी संस्कारों और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाए, ऐसे निर्विकल्प बनने का जादू का घर हो जाएगा। ऐसी सर्विस जब करेंगे तब प्रत्यक्षता होगी। तो ग्राउंड में क्या हो रहा है, वो सारे लोग इकट्ठे हो गए, वो सारे सिक्योरिटी गार्ड जिन्होंने कहा था कि हम आसुरी संकल्प आसुरी वृत्ति संस्कारों को अंदर आने नहीं देंगे, और वो सारों ने मिलके क्या कर दिया, फिर मधुबन क्या बन गया, जादू का घर बन गया। तो ग्राउंड में सारे लोग इकट्ठे हो गए, मार्केट में सिक्योरिटी गार्ड, बेड पर सोते हुए कौन हूं मैं, क्यू को खत्म कर दिया और अपनी सेवाओं में जैसे जितना हम न्योछावर है उतनी आत्माओं को भी हम न्योछावर करेंगे। और उसके बाद में हमारा अगला लोकेशन है एटीएम। तो ये स्पिरिचुअल एटीएम है, यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई है। कौन से लोग? दुखी अशांत जो है, सुख चैन की प्यासी आत्मा है, वो सभी इस एटीएम की तरफ आ रहे हैं। और ये भी सोचो कि मधुबन पांडव भवन ही स्पिरिचुअल एटीएम है, पूरा की पूरा कैंपस ही एटीएम है, जो चाहिए वो मिल सकता है, सारे खजाने हैं यहाँ पर। एक एक कौन है? चैतन्य मूर्ति के समान दर्शन मूर्त हो जाएंगे, एक एक रत्न का दर्शन करने के लिए दूर दूर से प्यासी आत्माएं आ रही है। तो पूरा मधुबनी क्या बन गया है आज? एटीएम। जब हम इस तरह से हटके सोचते हैं ना तो बुद्धि चलने लगती है, नहीं तो हम रूटीन में लॉजिकली ऐसा कभी नहीं सोचते। हमारा एटीएम अपनी जगह पर है, मधुबन अपनी, हमने कुछ और ही कर दिया अभी। तो यहां पे जो है पर लग जाते हैं, किसको? कल्पना को पर लगते हैं, कल्पना, विजुअलाइजेशन। तो उसमें नवीनता आती है फिर। तो ये हो गया, फिर उसके बाद में हमारा अगला ये हो गया चौथा लोकेशन। अब पांचवा, फिर आ जाओ बैंक में। तो बैंक में आज चार प्रकार की शक्तियां है, फोर पावर्स। यहां पर जो भी जाएगा उसमें चार प्रकार की शक्तियां भर जाएगी। कौन कौन सी शक्तियां? संगठन का, स्नेह का, सहयोग का और सहन शक्ति। तो ये एक ऐसा स्पिरिचुअल बैंक है जहां पर ये चार शक्तियां मिलती है, एक दो तीन चार, स्नेह, सहयोग, संगठन और सहन शक्ति। हमारे सहन शक्ति की परख कब होती है? कर्म क्षेत्र, दूसरी आत्माओं के जब हम संपर्क में आते हैं तब। कर्म क्षेत्र ही मेन है एक्चुअली, ये तो स्टेज है, कर्म क्षेत्र है। अभी 9 बजे से पहले और 5 बजे के बाद ये बैकग्राउंड है ये प्रिपरेशन है। लाइव जो टेलीकास्ट है ना वो ग्राउंड, वो ये है स्टेज, वहां जो कुछ होता है ये खाली आपकी प्रिपरेशन है। आप अमृत वेला करो ना करो, मुरली अध्ययन करो ना, पर्सनल है, सामने क्या दिख रहा है उस पर से डिसीजन लिया जाएगा। ये यहां क्या दिख रहा है, भले कोई 2 बजे उठ रहा है पर दिन भर लड़ाइयां चल रही है दो बजे उठते तो है पर दिन भर टकराते रहते हैं एक दूसरे से, वो भी फिक्स है पर 2 बजे का वो छूटता नहीं है वो आदत अनुसार हो रहा है, शाम का एकदम फिक्स है पर लड़ाइयां भी फिक्स है तो ये हो गया बैंक में, ये चार शक्तियां मिल रही है। फिर आ जाओ स्कूल में। स्कूल में टीचर जो है ना सबसे प्रतिज्ञा करा रहा है। सोचो एक ग्राउंड है बहुत बड़ा और टीचर सबसे एक साथ प्रतिज्ञा करा रहा है। तीन प्रतिज्ञा है, कौन सी प्रतिज्ञा है? सहनशीलता का बंध धारण करेंगे, क्यू की क्यू को खत्म करेंगे और आसुरी संस्कारों को पहरा देंगे। टीचर क्या कह रहा है सभी स्टूडेंट को? ये तीन, वो सोचो टीचर मैं ही हूं स्कूल का टीचर और बच्चों को कह रहा है आज से क्यू की क्यू खत्म, कोई कारण नहीं देना। चार विद्यार्थी होते हैं, उनकी अगले दिन एग्जाम होती है और भूल ही जाते हैं एग्जाम है, वो पार्टी में चले जाते हैं कहीं और फिर लेट हो जाते हैं और फिर दूसरे दिन सोते रहते हैं। 10 बजे उठते हैं फिर उनको याद है 8 बजे तो पेपर था, फिर बोलते कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, वो पूरा कार जो होती है ना उनका, उसका वो ग्रीस वगैरह लगा लेते हैं, कपड़े खराब वो सब, और फिर वहां पहुंचते हैं प्रिंसिपल के पास, कहते हैं कि हम आ रहे थे चारों, कार ही खराब हो गई, देखो ये सब मैकेनिक और ये सब में अभी हमारा, प्लीज कल ले लो पेपर। टीचर प्रिंसिपल कहता ठीक है तो दूसरे दिन पेपर होता है, तो वो कहते हैं ना कार का पंचर हो गया था, तो वो कहते हैं हाँ पर एक शर्त है, चारों को अलग अलग कमरे में रखेंगे ठीक है, और एक ही प्रश्न होगा ठीक है, चारों को अलग अलग कमरे, प्रश्न एक ही है, कौन सा चक्का पंचर हुआ था? ऑप्शन 1, 2, 3, 4, फ्रंट का राइट लेफ्ट, बैक का रियर का राइट और लेफ्ट, अभी निको अलग अलग जगह पर बैठ के चलो शक्ति का बल क्यू की क्यू, कोई कारण नहीं आसुरी संस्कारों का पहरा, ये तीसरा। तो उसके बाद में आ जाओ कॉलेज। तो कॉलेज का नाम क्या है? वंदे मातरम कॉलेज। कॉलेज का नाम ही वंदे मातरम है, जिसमें केवल माताएं हैं। और ये ऐसी, ये कोई सिंपल वाली माताएं नहीं है, सुपर माताएं हैं, जिनको भगवान भी आकर एकदम सलाम ठोकता है सुबह सुबह आके। सुपर माता, सिंपल माता नहीं, सुपर माता। वंदे मातरम कॉलेज है, जिसमें भगवान क्या करता है, भगवान बच्चों को कहते हैं वंदे मातरम। कितना फर्क हो गया, इतना नशा रहता है। जिस बाप की अनेक आत्मा वंदना करते वह स्वयं आकर कहते हैं वंदे मातरम। इस कुमारी की निशानी क्या होगी? उनके नयन, उनके मुखड़े, उनके चलन बोल आदि से खुशी झलकती है, जिस खुशी को देख कईयों के दुख मिट जाते हैं। भगवान ही आकर ये आज माताओं का है। फिर आ जाओ रिहैब सेंटर। तो रिहैब सेंटर भी ऐसा अजीब सा रिहैब सेंटर है, यहाँ पे लोग उठते हैं और इतने सब हर्षित है कि एक दूसरे की शक्ल देखते ही खुश हो जाते हैं। तो आप बच्चों को हर्षित चेहरा देखकर अंदर हर्ष हो जाएगा। दुनिया में भी कहते हैं शक्ल का प्रभाव पड़ता है, सबसे पहले किसकी शक्ल देखी, ऐसा कहते हैं ना। आज पता नहीं किसकी शक्ल देख ली थी सुबह सुबह, कुछ तो गड़बड़ हो गई। तो ये एक रिहैब सेंटर ऐसा है कि यहाँ सभी खुश है, उठते हैं तो खुशी। फिर लास्ट पेट्रोल पंप। अब ये भी विचित्र पेट्रोल पंप है, चेकिंग पोस्ट है ये, वहां चेकिंग पॉइंट है। इस पेट्रोल पंप में आप जब भी पेट्रोल भरने जाओगे तो चेकिंग होती है, किसकी संकल्प समय कर्म संस्कार इन चारों के ऊपर चेकिंग करनी है इन सबकी। और यहां पर जो ऊपर स्लोगन लगा है ना पेट्रोल पंप का, रोज बदलता है। कदम कदम पर हर रोज कोई ना कोई स्लोगन सामने रख, उसको प्रैक्टिकल में लाओ। कितना अच्छा वाक्य है, रोज एक स्लोगन ले लो और उसको प्रैक्टिकल में लाओ। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला कर्म प्लेस। कर्म प्लेस में क्या मुरली कौन सी है? ये 70 की, 5-3 की। तो क्या है, सबसे पहले कर्म प्लेस पर क्या करो? जैसे तुम न्यौछार हुए हो दूसरों को भी न्यौछार करो, जैसे तुम अर्पण हुए दूसरों को, जैसे तुमने जंप लगाई है दूसरों को भी जंप लगाओ, जैसे तुम चढ़े हो अब तुम भी चढ़ाओ, जैसे तुम स्वाहा हुए दूसरों को भी स्वाहा करो। काशी कलवड़ वो खाते हैं, स्वतः ही काशी कलवड़ खाए, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। पुरुषार्थ सारा भीतर करना है, बाहर की घटनाएं अपने आप होगी। कितने लोग ऐसे ज्ञान में आए हुए, उन्होंने कभी किसी से कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं पूछा, बस देख लिया किसी को और उसको देखते ही लगा कि हाँ ये, बस उससे भी जाके नहीं पूछा। और कुछ वो दूसरे कैटेगरी है, वो पूछते ही रहते हैं, 10 साल से पूछ ही रहे, मधुबन में आ जाए क्या, मतलब ठीक होगा ना अगर बीमार पड़े तो, ट्रीटमेंट सब फ्री तो होगी ना, ऐसे सब आके पूछते क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, कपड़े वगैरह सके, मतलब कुछ खरीदना तो नहीं पड़ेगा ना, मतलब हिसाब से पूरा सौदा के साथ। हाँ पुछल तारे, पूछते ही रहते, पूछते ही रहते, पूरी फुल सिक्योरिटी, हमारा सब ठीक होना चाहिए तो हम आएंगे। समर्पण अर्थात अज्ञात में छलांग, पता ही नहीं क्या होने वाला है, कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं, कुछ पता नहीं क्या होने वाला है, कहाँ होने वाला है, कैसे होने वाला है, बस आ जाना, जो होगा देखेंगे फिर। पर ये पता है कि यही सत्य है, इसके अतिरिक्त और कोई सत्य नहीं, इसमें डूब जाओ कूद जाओ। हमें याद है हम जब पहली बार आ रहे थे ऊपर 2003 में, बाबा से मिले पहली बारी, कोई सेंटर नहीं कुछ नहीं, और फिर घर गए और फिर वापस आए 15 दिसंबर 2003 ज्वाइनिंग था। तो शांतिवन में आए और फिर ऊपर आ रहे थे गाड़ी में बैठकर, तो एक नागपुर का भाई था, वो कह रहा था कहाँ जा रहे हो? हमने कहा ग्लोबल। बोले कहाँ रहोगे? हमने कहा ये तो पूछा ही नहीं कहाँ रहना है, पर हमें याद था यहाँ से जाते जब जा रहे थे ना वो शंकर मठ दिखा था, हमने सोचा वहाँ रह लेंगे और इधर सेवा करेंगे। तो वो भाई बैठा था, तो अच्छा वो नागपुर सेंटर के प्रेम भाई थे, अभी भी है। तो बोले सामान, तो हमने कहा सामान तो बस एक ही पॉलीथीन है, उसमें एक कुर्ता वो नीचे से खरीदा था और फिर कहते बाकी कुछ, बाकी अभी वहाँ जाके देखेंगे। तो फिर अच्छा वो ऐसे ऐसे करने लगे, अच्छा अच्छा तुम्हारे शूज हॉस्पिटल में काम करोगे ना? उन्होंने कहा तो शूज वगैरह में चप्पल है बस इतनी काफी है। तो बोले सोच लो थोड़ा। मैंने कहा ठीक है सोच लिया है और उसने वो गीत बजा उसमें आते समय, ऊपर आते समय फिल्म का, क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, यहां नहीं आ वो नहीं सुनता, उसको चल जाना होता है प्यार दीवाना गीत है ना ऐसे एक तो बस कूद जाओ, वो होगा वो देखेंगे फिर, कहाँ रहना है, क्या करना है, क्या खाना है, कहाँ पीना है, ये सब किसका काम है? जिसने बुलाया वो देखेगा, हम क्यों करें कुछ। हाँ फिर हम आए हॉस्पिटल में तो प्रताप सर से मिले तो अच्छा तो ज्वाइन कर लो। तो कपड़े वगैरह मिले, कपड़े तो अभी हम अभी देखेंगे। फिर वो भाई को बुलाया किचन वाले, बोले नए डॉक्टर आए हैं तो इसको जरा कपड़े दिला दो फिर वो घनश्याम भाई लेके गए मार्केट में फिर ये 2000 की तब की बात है 15 दिसंबर, तो फिर कपड़े दिला दिए तो सबसे पहले वर्क प्लेस पर समर्पण, समर्पण करो। दूसरो बेड पर गए तो, आज बेड पर गए तो क्यों सारी खत्म। ठीक है हजारों प्रश्न है पर इन प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं है। भगवान भी सामने आ गए, बैठ गया और हम उससे पूछे बताओ अब भी बताओ, उत्तर इधर उधर भटकाना मत, जो प्रश्न पूछ रहा हूं वही देना बाबा। क्योंकि बाबा क्या करते हैं गोल गोल घुमा देते ना, वहां से प्रश्न है ना वहां से चालू करो, बिकॉज से वहां से एग्जैक्ट उत्तर चाहिए मुझे, मैं यहां मधुबन निवासी बनूं या ना बनूं, हाँ या ना, डायरेक्ट उत्तर बताओ, फिर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। भगवान भी क्या कहेगा, मौन हो जाएगा वो, क्योंकि वो तो जानता है ना सब। तीसरा तीसरा मार्केट, मार्केट में हमें सिक्योरिटी गार्ड, कोई भी आसुरी संकल्प और वो संस्कार अंदर नहीं आएगा। फिर ग्राउंड, ग्राउंड में सारे वो इकट्ठे हुए ऐसे सारे सिक्योरिटी गार्ड्स कि जिन्होंने ये प्रतिज्ञा की है कि किसी को आने नहीं देंगे, और ये सब मिलके इन्होंने क्या कर दिया, मधुबन को जादू का घर बना दिया। उसके बाद में आ जाओ एटीएम, एटीएम में भीड़ लगी हुई है, लोग आ रहे हैं, दुखी प्यासी अशांत आत्माएं हैं और यहां पर उनको सुख शांति मिल रही है। ठीक है तो मधुबन क्या है, स्पिरिचुअल एटीएम। उसके बाद में पहुंच जाओ बैंक, बैंक में पांच चार कौन से बल है, स्नेह सहयोग संगठन और सहनशील। जब भी मुरली में आगे पीछे हो ना उसको अपनी सुविधा से हमको ठीक करना है, जैसे पहला संगठन है फिर सहयोग फिर स्नेह, तो आप जो हमारी बुद्धि में बैठा गया है स्नेह सहयोग संगठन उसको इस तरह एडजस्ट कर लो और सहनशीलता। उसके बाद में पहुंच जाओ कहां, स्कूल में, कौन सा स्कूल है, तीन प्रतिज्ञा करा रहे हैं, कौन सी प्रतिज्ञा है तीन, एक क्यों को खत्म, सहनशीलता धारण और आसुरी संस्कारों पर पहरा, वही जो ऊपर चल रहा था उसी का समराइज कर दिया। तो हमने इन तीनों प्रतिज्ञाओं को स्कूल में डाल दिया। फिर कॉलेज, कौन सा कॉलेज है, भगवान सुपर माताओं को क्या कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, कमाल है तुम्हारी, लोग मेरी वंदना करते हैं मैं तुम्हारी वंदना कर रहा हूं। फिर आ जाओ रिहैब सेंटर पर, कैसा रिहैब सेंटर है, जहां एक दो उठते हैं सुबह सुबह और हंसते हुए, आज 8 मार्च, अच्छा महिला, अरे वाह कमाल है इंटरनेशनल वुमेन डे, शिवरात्रि भी है और ये मुरली भी है और ये कॉलेज भी खुला है फिर उसके बाद में नेक्स्ट रिहैब सेंटर में इतने खुश है सब कि जो भी उठते हैं वो मुस्कुराते हुए उठते, इतने खुश है, जिसको देखो दिन बन जाता है, क्या बात है नेक्स्ट पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप में जो ऊपर स्लोगन है ना हर रोज बदलता है, इसलिए आपके जो सेंटर है या जगह है वहां पे भी जो स्लोगन्स वगैरह वो भी चेंज करते रहना चाहिए, एक ही एक रखा हुआ है, कितने सदियां बीत गई वो कोई चेंज ही नहीं किए, पिक्चर स्लोगन्स चेंज करते जाओ उसको तो थोड़ी नवीनता रहेगी, ये भी कितनी अच्छी बात है, नए नए पिक्चर्स नए नए स्लोगन्स नए नए सामान जो आज तक किसने सोचे नहीं ऐसे सामान निकालने, एकदम हटके जो सामान है एकदम ऐसा धक्का लग जाए और सोचने में मजबूर कर दे। इस सृष्टि का केंद्र मैं हूं, कितना अच्छा समान है। यह जो धरती है उसके बीच का जो पॉइंट है ना, वो मैं हूं, पूरे धरती का पोषण कर रहा हूं। ये हो गया। अगला पेट्रोल पंप डन। अभी आ जाओ नेक्स्ट मुरली। एक मुरली पूरी हो गई, अभी फास्ट दूसरी मुरली। धीरे धीरे स्पीड को हम बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला है, सबसे पहला 41। अब ये पहले लोकेशन से याद कर लो और उसके बाद जो भरना है उसमें बहुत फास्ट करेंगे उसको। तो सबसे पहला हम पहुंचे, पेट्रोल पंप से पहुंचे रेलवे स्टेशन। कहां पहुंचे? रेलवे स्टेशन। आंख बंद करके पहले देख लो हम जो बता रहे। आंख बंद, अपने आप को पहुंचते हुए देखो। रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, वहां से ट्रेन में बैठे, ट्रेन चल पड़ी, फिर आगे एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट से उतर, एयरपोर्ट के वहां पर फ्लाइट में बैठे, फ्लाइट चल पड़ी, फ्लाइट उतरी, वहां से पैदल गए सामने बस स्टैंड, बस डिपो, फिर वहां से बस पकड़ी, बस पकड़कर पहुंचे अपने सेंटर पर, जो भी आपका सेंटर है, या जो मधुबन निवासी है वो अपने पुराने सेंटर को याद करेंगे जहां से आए थे। उस सेंटर पर गए, सेंटर पर बैठे, सेंटर के एकदम सामने ओल्ड एज होम है, रोड क्रॉस के सामने एक ओल्ड एज होम है, वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम के बाजू में एक किराने की शॉप है, ग्रॉसरी स्टोर, और किराने स्टॉप के बाजू में एक मेडिकल स्टोर है। फिर से एक बार हम पेट्रोल पंप से निकले और सबसे पहले पहुंचे रेलवे स्टेशन, वहां से ट्रेन पकड़ी, पहुंचे एयरपोर्ट, वहां से फ्लाइट पकड़ी, बस स्टैंड, वहां से बस पकड़ी, पहुंचे सेंटर, सेंटर के आगे ओल्ड एज होम, ओल्ड एज होम के बाजू में किराना शॉप, किराना शॉप के बाजू में मेडिकल स्टोर, स्टॉप। अभी मुरली पर आ जाते हैं। ये हमारे हैं 10 नए लोकेशंस, ठीक है। 10 लोकेशंस लिख लो। पहला रेलवे स्टेशन 41, 42 ट्रेन, 43 एयरपोर्ट, 44 फ्लाइट, 45 बस डिपो या बस स्टैंड, 46 बस, 47 बीके सेंटर, 48 ओल्ड एज होम, 49 ग्रॉसरी शॉप और मेडिकल स्टोर। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है इस मुरली में, सबको मजा आएगा। ये मुरली कौन सी है? 23 की मुरली है। ये मुरली अब होली पर है, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं रेलवे स्टेशन पर। तुम्हारे पुरुषार्थ की सिद्धि तब होगी जब संस्कारों का मिलन होगा। तो आज रेलवे स्टेशन पर ढेर सारे संस्कार आए, इनको कहीं जाना है। कौन आए हैं? संस्कार। तो संस्कारों का मिलन कहाँ हो रहा है? रेलवे स्टेशन। मुरली किस पर है? होली पर। अभी होली पर यूजुअली 3-4 बातें हर मुरली में होती है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे कि होली के 4-5 अर्थ बाबा ने बताया। पहला, होली जो हो गई, बीती सो बीती, ना उसका चित्त पर धरना, ना उसका चिंतन करना, ना उसका वर्णन करना, ये 3 बातें हैं। जो कुछ पास्ट हो गया, न चित्त पर धरना, न चिंतन करना, न वर्णन करना, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वही पुरानी बातें डिस्कस ही करते रहते हैं। जब देखो तब, कितना साल, जब भी फोन आया मतलब अभी 10 मिनट गए, उठाना कि नहीं उठाना वो प्रश्न रहता है, वही पुराना पुराना रिपीट करते रहते हैं। तो ये होली, एक तो ये अर्थ, दूसरा पवित्र, तीसरा रंग में रंगना, चौथा होली बाप की हो गई, बाप का बन गई। ये 4 हर मुरली में रहेगा, कभी 2 रहेंगे, कभी 1 रहेंगे, कभी 3 रहेगा, कभी कहेंगे 3 अब सुनाए, अगली बार सुनाएंगे वो अगला कभी आता नहीं, ऐसा मुरलियों में चलते रहता है, ठीक है। तो ये होली। तो सबसे पहले रेलवे स्टेशन पर क्या है आज? संस्कारों का मिलन। फिर ट्रेन, फिर ये जो सारे संस्कार थे ना, ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन जा रही है कहीं और, सतयुग वगैरह, कहीं पे भी आप भेज सकते हो, संगम ट्रेन वगैरह वगैरह, और वहां पर संस्कारों के मिलने के लिए दिलों का मिलन करना पड़ेगा। तो ट्रेन में जैसे ही सब बैठे, सबकी आपस में क्या हो गई? दोस्ती हो गई। तो संस्कारों का मिलन तब होगा जब दिलों का मिलन होगा, सबके दिल एक साथ मिल गए। फिर हम पहुंचे कहां? एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट के अंदर, एयरपोर्ट में वहां देखा मनमोहिनी दीदी बैठी है, बाबा 8 दादियों से मुलाकात कर रहे हैं इस मुरली में। कितनी दादियों से? 8। तो एयरपोर्ट पर कौन बैठी थी? और वो तख्त पर बैठी थी। वो एक तख्त में तीन तख्त समाये हुए थे, कौन कौन से? दिल तख्त, सर्विस का तख्त और भविष्य का राज तख्त। तो एयरपोर्ट पर कौन मिला हमें? दीदी मिल गई। वो वहां बैठी थी और सबको सकाश दे रही थी बैठे बैठे, तख्त पर बैठे। फिर हम गए फ्लाइट के अंदर, फ्लाइट में गए तो दादी जा प्रकाशमणि अंदर बैठी थी। दादी जी कैसी बैठी थी? नशे में, एकदम नशे में प्रकाशमणि दादी। कहां पर बैठी थी चिमन भाई? प्लेन में, फ्लाइट के अंदर दादी बैठी, जो सदैव नशे में और निशाना बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। तो हमने दादी को कहां बैठते देखा आज? फ्लाइट के अंदर बैठी थी। दादी को पूछा कहां जा रहे? दादी कह रही बाबा भेज रहे, सेवा में जा रही हूं। फिर हम वहां से उतरे, फिर हम वहां से उतर के पैदल गए कहां? बस स्टैंड। तो बस स्टैंड पर देखा दादी जानकी खड़ी है। बस स्टैंड पर कौन खड़ा है? दादी जानकी खड़ी है। क्या कर रही है? वाणी से सेवा कर रही है। कौन है दादी? वाणी मूर्त। और वाणी से सेवा करते करते लोगों को क्या हो रहा है? साक्षात्कार। अब वाणी से औरों को साक्षात्कार होता है, लेकिन फिर होगा साइलेंस से साक्षात्कार। तो दादी क्या करा रही है वहां पे? साक्षात्कार। यह भी टॉपिक है, जितनी जितनी समानता देखो उसमें उतने समीप समझो। तो दादी कैसी बाप समान अवस्था में कहां बैठी है? बस स्टैंड पर। और क्या कर रही है वहां पर? भाषण दे रही है। वाणी मूर्त है और साथ साथ साक्षात्कार भी करा रही है। फिर हम पहुंचे, बस के अंदर घुसे, फिर वहां बस आ गई। बस के अंदर जा रहे तो वहां देखा चंद्रमणि दादी बैठी है बस में। दादी को पूछा तुम कौन हो? दादी कहती मैं हूं चंद्रमणि, मैं हूं सूर्यमणि। तो देखा यहां सूर्य चमक रहा है चंद्रमणि दादी के। तो शक्ति रूप और शीतल रूप दोनों, सूर्यमणि भी हूं और चंद्रमणि भी हूं बाबा के मुरली में, महावाक्य दादी के, दादी ऐसी कह रही है। तो लाइट माइट दोनों दिखाई दे रहा है। कहां पर? बस के अंदर। बस पहुंच गई कहां पर? सेंटर पर। सेंटर पर जाके देखा तो निर्मल शांता दादी क्लास करा रही है। सेंटर के अंदर कौन क्लास करा रहा है? निर्मल शांता दादी। तबीयत ठीक नहीं है फिर भी बाबा कह रहे हैं व्याधि बदलकर खेल रूप हो जाती है। दादी के लिए शरीर की बीमारियां क्या है? खेल है। शरीर को कुछ भी हो रहा है पर सेंटर पर मुरली सुनाने की ड्यूटी है तो सुनाई रही है। और सोचो ये सब दादियां 70s की दादियां हैं, यंग वाली दादी है सारी। जितना साक्षी अवस्था ज्यादा रहेगी उतना समझो कि साक्षात्कार मूर्त बनते जा रहे हैं। तो निर्मल शांता दादी क्या कर रही है? सेंटर पर मुरली चला रही है। सामने हमने देखा वहां कौन है? ओल्डेज होम। हमने सोचा चलो वहां जाके आते हैं। ओल्डेज होम में घुसे तो कौन मिला? शांतामणि दादी मिल गई। वो क्या टॉपिक पर भाषण कर रही है? श्रेष्ठता, स्पष्टता से श्रेष्ठता। कहां पर? ओल्ड एज होम में। सब बूढ़े बूढ़े लोग हैं तो दादी तो जवान है। दादी गई है और दादी क्या कर रही है? सबको ज्ञान सुना रही है। एक एक दादी का नशा है, ठीक है। फिर हम और आगे बढ़े, ओल्ड एज होम के बाजू में क्या है? किराने की दुकान। वहां रतनमणि दादी, वो कहती है कि कहां हो, क्या कर रहे हो? सर्विस पर हूं। सर्विस का ताज, जिम्मेदारी का ताज है, बाबा ने भेजा है यज्ञ के लिए सामग्री लाने के लिए। दादी सभी देखो तो सभी दादियों में एक गुण हमेशा दिखाया है, निरंकारिता। उनको कोई अपना अभिमान ही नहीं है, कहीं कुछ भी जरा सा भी अभिमान नहीं है। हम रुक्मिणी दादी को मिलने जाते थे जब भी, तो सबसे पहले पूछती थी जानकी दादी कैसी है, अपना बाद में, पहले वो उसका बताओ, मेरा बाद में। मतलब वो जो मैं होता है ना एक, वो कहां पता नहीं था ही नहीं, एक अजीब ही मिट्टी की बनी थी ये सभी दादी कि जिनमें वो जो होता है ना मैं वो आपसी प्यार भयंकर। तो यहां पर रतनमणि दादी मिल गई। एक है स्नेह, दूसरा है सर्विस का। सर्विस का ताज जिम्मेदारी का ताज है। तो जहां डबल ताजधारी बनते हैं वह वहां भी डबल ताजधारी, तो वहां भी डबल ताजधारी बनते हैं। फिर हम बाजू में गए तो बाजू में कौन मिल गया? मेडिकल स्टोर MD मनोहर दादी। तो मनोहर दादी क्या कह रही है वहां पर कि आज वो जो है वहां का भाई नहीं है तो बाबा ने मुझे डिस्पेंसरी में बिठा दिया, मेडिकल स्टोर में, सेवा में। सर्व के स्नेही और सर्व के स्नेही, जो सर्व त्यागी होते हैं वही सर्व के स्नेही और सहयोगी बनते। त्याग है पूरे जीवन में। जो सेवा दे दी मेडिकल स्टोर की सेवा दे दी मनोरिंद्र दादी, वहां बैठ गई और मेडिकल स्टोर की सेवा कर रही। चलो मुरली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला रेलवे स्टेशन, कौन आया वहां पर? संस्कारों का मिलन, सारे संस्कार एकत्र हुए। होली कौन सी है, मुरली कौन सी, होली की, होली अर्थात संस्कार मिलन, तो सारे संस्कारों की मिलन हो रहा है। सब कहां बैठे, ट्रेन में, ट्रेन में क्या हो रहा है, दिलों का मिलन हो रहा है। ट्रेन कहां पहुंची, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे कौन बैठा था, दीदी बैठी थी, कैसी बैठी थी, तख्त पर बैठी थी, उसमें तीन तख्त थे, दिल तख्त, सर्विस का तख्त और भविष्य तख्त। फिर हम पहुंचे फ्लाइट में, फ्लाइट में जाते ही कौन बैठा था वहां, कुमार का दादी, प्रकाश मणि दादी, में कैसे बैठी थी, एकदम नशे में, निशाना एक्यूरेट और नशे में बैठी है। फ्लाइट उतरी, फिर हम पैदल गए, कहां गए, बस स्टैंड पर गए, तो जानकी दादी वाणी मूर्त क्या कर रही है, सबको भाषण कर रही है और साक्षात्कार करा रही है साथ साथ, कमाल है दादी की भी। और उसके बाद में फिर हम पहुंचे बस के अंदर, तो बस में कौन मिला, चंद्रमणि दादी को पूछा तुम कौन हो, दादी कहती मैं सूर्यमणि हूं, मैं चंद्रमणि हूं, दोनों हूं। और देखा सूर्य चपक रहा है, लाइट माइट शक्ति और स्नेह का बैलेंस। फिर वहां से उतरे, कहां पहुंचे, सेंटर, सेंटर पर मुरली कौन चला रहा है, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, निर्मल शांता दादी, परंतु फिर भी मुरली चला रहे, साक्षात साक्षी भाव से अपनी व्याधि को देखते हुए। सर्विस नहीं रुकनी चाहिए, यहां तो थोड़ी छींक आ गई तो बेड पकड़ लेते, भाई साहब कहां है, रेस्ट पर है। कहां पर है, रेस्ट पर है। दो दिन की खांसी और हमारे ओपीडी में आते हैं वो लिख के दो रेस्ट, कितना, 10 दिन का, और लिख के तब नहीं दो, 10 दिन के बाद ही आते हैं कि अब लिखो एडमिट, तो है 2 दिन के लिए और रेस्ट है 15 दिन का, उस पर अब साइन करो क्योंकि बॉस को दिखाना है। अगला, ओल्ड एज होम, ओल्ड एज होम में कौन था, क्या कर रही थी और टॉपिक कौन सा था दादी का, श्रेष्ठता से ही श्रेष्ठता, स्पष्टता से ही श्रेष्ठता, स्पष्टता, ये टॉपिक आप ले सकते हैं, इस पर भी आप लिख सकते हैं। उसके बाजू में क्या था, किराने की दुकान, रतनमणि दादी, देखो डबल ताज, स्नेह सहयोग, उसमें बहुत सारी और भी बातें, वो आप पढ़ सकते हो, हम जस्ट शॉर्ट में बता रहे हैं। तो कोई भी सेवा हो, स्थिति महान हो बस। और उसके बाजू में क्या है, मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टोर में क्या है, मनोरिंद्र दादी सेवा कर रही है, त्याग, हर चीज में त्याग समाया हुआ है। तो ये हो गई पूरी मुरली रिवाइज। अगर हम इस लोकेशंस के आधार पर मुरलियों को रिवाइज करेंगे तो इसका एक पिक्चर हमारे मन में बैठा रहेगा, नहीं तो इतनी 8 दादियों को क्या क्या कहा, किसको याद रहता है, रहता है याद, सब भूल जाता है, इसको पिक्चर बना देना है, ठीक है। तो आज का होमवर्क है, सबसे पहला होमवर्क, जो 25 लोकेशन से साकार मुरली आज लिखेंगे नहीं, मेंटल रिविजन करेंगे, सुनते हुए पढ़ लिया एक बार, फटाफट लिंक करते जाओ, स्टोरी बनाते जाओ, लिंक करते जाओ, स्टोरी बनाते जाओ, छोड़ते जाओ, रिवाइज भी नहीं, और फिर बाद में रिवाइज करना, याद करना। अच्छा, दूसरी मेथड, आज का दूसरा होमवर्क है दो अव्यक्तवाणी, तीसरा होमवर्क है तीसरी अव्यक्तवाणी, दो अव्यक्त, फर्स्ट एंड, तीन होमवर्क है, साकार मुरली, अव्यक्त मुरली 1, अव्यक्त मुरली 2। अभी अव्यक्त मुरली का क्या करना है, तो सबसे पहले लोकेशन लिख देंगे डायरी में, मुरली पढ़ते पढ़ते एक फास्ट रीडिंग हो गई, सेकेंड रीडिंग पढ़ते पढ़ते ही जो पॉइंट आती है वो डालते जाओ उसमें तुरंत, एक 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 8 दादियां, 8 दादियों के 8 पॉइंट्स में डाल दिए, कल कुछ और होगा, फटाफट फटाफट डाल दिया। अब मुरली बाजू में रख दो, ये जो पॉइंट्स है उनको एक बार देख लिया फिर छोड़ दो, फिर दोपहर में कभी टाइम मिला एक बार फिर से देख लो, फिर रात में कभी टाइम मिला फिर से देख लो, तो बुद्धि में क्या चले, चिंतन चलता रहे। एक एक महावाक्य भगवान के महावाक्य है, गिरने नहीं देगा, जो गिर रहे थे शाम का टाइम है गिरने का, रात को सोते समय का टाइम है गिरने का, ये वाक्य पकड़ के रखेंगे, थाम लेंगे, गिरने नहीं देंगे। अच्छा, ओम शांति। भाई, ब्रदर, वेर आर यू, वी आर वेटिंग फॉर योर ब्रेन चिम, प्लीज कम। ये फ्रांस के भाई है, नाम, नो नो नो, प्लीज कम फर्स्ट। सो फ्रांस के भाई आज हमको, इन्होंने आज कुछ दिनों पहले एक बड़ा लेटर दिया हमको, बहुत ही जबरदस्त वाला लेटर था, बाद में बताएंगे उसमें क्या था। तो आज ये भाई हमको फर्स्ट गिव योर इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन एंड देन ब्रेन जिम।
ओम शांति। इस शरीर के नाम कृष्ण
क्या
But you translate before it was Christian, but in India there is confusion. I am Christian. They answer I am Hindu. So I go to Janki Daddy, and she said, "Now you are Christian." No, okay. Mais Francisie ou France, UK or Germany, Cambridge, France. So is Gian me Batissal. Yeah. May our Samarpit center me. Actually, it's very good. Double Videshi country in India. Only sister, they got to be in center, but it's very good to be brother in double Videshi country because you also can be surrendered. So this is good fortune. And our Kirchaye. Ah, yeah. Oh, Shanti. So, exercise Saj. So, now, Anguta or Anguli. Okay.
Yeah. Anguta and
okay. So, then, close. Do see a change. Now, close. Saj, Opposite, yes. Yeah. Okay. So, doucera exercise. No, so, okay. So, doucera exercise. Music. Yeah. So, here is the end. So, this is. This one is Agni. This one, yeah, Agni. This one is Vayu. This one is Akash. This one is Priti Bhumi, and this one is Jal. Okay. So now is so is Jal? No. Jal. Agni. Yeah. Now this is Vayu. Okay. Now this is Akash, this is Priti Bhumi, and this is Jal. Yadrakna? Okay. So now I talk and you follow. So Agni, Vayu, Jal. Priti, Darti, Bhumi, yeah, like, okay, Jal, Vayu, Jal, Vayu, Jal, Vayu, Jal, Vayu, Agni, Vayu, Agni, Priti, Agni, Darti, Agni, Jal, Jal, Vayu, Jal, Jal, Akash, Akash, Agni, Akash, Agni, Akash, Agni, Akash, Agni, Vayu, Agni, Vayu, Agni, Vayu, Jal. Jal, Priti, Jal, Priti, Jal, Priti, Jal, Priti, Jal, Priti, Jal, Agni, Agni, Akash, Akash, Ayu, Akash, Ayu, Akash, Ayu, Akash, Ayu, Akash, Ayu, Jal. Jal, Priti, Jal, Priti, Jal, Priti, Jal, Ayu, Ayu, Akash, Ayu, Akash, Ayu, Akash, Ayu, Akash, Ayu, Vani, Agni. Bas?
Okay.
Yeah?
Where you learned this?
From Mudra? No?
Assembly.
No, this is very, very good for being alert and also revising Murli. I like it, but I don't understand, so... So I understand like 5%, 6%. But I like it. And okay, Mubarak. Okay, Kalminange.
Ye kranti hai pran ki, urja ke udhan ki, ये क्रांति है अव्यक्त की, ऊर्जा के उद्धान की, आरोहण है शक्ति का, संरक्षण है ब्रह्मचर्य का, आरोहण है शक्ति का, संरक्षण है ब्रह्मचर्य का, ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उद्धान की, नर्तन है संकल्प का, गीत है परिवर्तन का, नर्तन है संकल्प का, गीत है परिवर्तन का, ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उद्धान की, ये क्रांति है प्रचंड, ये क्रांति है अखंड, ये ऊर्जा है अग्नि कुंड, ये ऊर्जा है यज्ञ कुंड, ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उद्धान की, संगम में है संभव उत्क्रांति जो असंभव, व्यक्त से अव्यक्त की है ये अभिक्रांति, ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की, ये क्रांति है अव्यक्त की, ऊर्जा के उत्थान की, आत्मा शुद्धि से ही